بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20 فروری 2024 کو جو ہم آپ کے لیے ناول ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جنگل روتے ہیں، جس کے مصنف ہیں اے حمید. اس ناول کے ٹوٹل پیجز ہیں 237. یہ ناول قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اپنی رائے کا اظہار دینے کے لیے اور مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں، 03-06-78-78-222 03-06-78-78-222 یا ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.qurtaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ناول کا پارٹ نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگل روتے ہیں اے حمید. چمبا گلی میں ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، ابھی ایک پہر رات باقی ہے اور قصبہ پنچ ناگ جانے والی پتھریلی سڑک دھند کی لطیف چادر اوڑھے سو رہی ہے. اس کے دونوں کناروں پر اگے ہوئے سفیدے کے درخت بڑے نالے کے پل تک چلے گئے ہیں. ان درختوں میں بسیرا لینے والے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چپ چاپ پڑے ہیں، اور ان کے اوپر پہاڑوں کے گہرے نیلے شفاف آسمان پر چمکیلے ستاروں کے فانوس جل ملا رہے ہیں. چمبا گلی سے 3 کوس اوپر قصبہ پنچ ناگ کے ایک منزلہ مکان کے ہلکے ہلکے خاکے تاروں کی دھیمی روشنی میں سایوں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں. چنار اور چڑھ کے سنسان جنگلوں میں شروع بہار کی راتوں کی گہری اور صحت مند خاموشی چھائی ہے. ان کے عقب میں جموں کا نگرا کشمیر اور تبت کی برف پوش چوٹیاں کوہرے کی سر چادر میں چھپی ہوئی ہیں. چراگاہوں میں شبنم میں بھیگی ہوئی تازہ گھاس ان بھیڑ بکریوں کے انتظار میں ہیں جو خاردارے باڑوں کے اندر ایک دوسری سے لگی سو رہی ہیں. اگرچہ یہ بہار کے دن میں اور مٹی شروع ہو چکی ہے اور مئی شروع ہو چکا ہے، تاہم مکئی اور باجرے کے کھیتوں میں سردیوں کی ایسی دھند چھائی ہوئی ہے اور آلوچے اور بٹنگ کی ٹہنیوں پر لگے ہوئے نیم کانسنی اور سفید پھولوں پر سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہیں. سیب اور گلاس میوے کے باغات میں رات کے آخری سائے دم توڑ رہے ہیں، اور مشرقی آسمان پر پہاڑوں کے اوپر صبح کاذب کی نیلگوں جھلک سی نمودار ہونے لگی ہے. زمین سے 10,000 فیٹ کی بلندی پر جب پہاڑوں پر صبح ہوتی ہے تو جنگلوں وادیوں اور چراغوں میں بھوزو کا جشن منایا جاتا ہے. اس جشن میں چڑھ کے جھومر، سیب کے شگوفے، آلوچے کے پھول اور اس کی کلیاں اور چشموں کی رل ترل بل کھاتی پتلی دبلی ندیوں کی موسیقی اور گلدموں، ٹڈوں، بھوروں اور طوطوں کے گیت حصہ لیتے ہیں. یہاں جب سورج سر پر کرنوں کا سنہری تاج رکھے کوہ کاف کی برف پوش چوٹیوں سے جھانکتا ہے تو وہ کارخانوں کی طرف بھاگتے ہوئے فکر مند چہروں کے بجائے گھاس کے سبز تلوں پر آزادی اور بے فکری کی کلیاں کرتی سپید سپید بھیڑوں کو دیکھتا ہے، اور کاروں، موٹروں اور ریڑوں اور گھوڑا گاڑیوں کی بے ہنگم شور کے بجائے دودھ بلوتی گوالوں کی چوڑیوں کی میٹھی جھنکار سنتا ہے، اور بادام کے درختوں میں پھدکتی ہوئی چڑیوں کی چہکاریں سنتا ہے. وہ ان عورتوں کو بھی دیکھتا ہے جو اپنے کاہل اور بدھے جسم ریشمی کملوں میں چھپائے سو رہی ہوتی ہیں، اور جنہیں کبھی کھانا ہضم نہیں ہوتا اور جو 2 قدم چلنے پر ہانپنے لگ جاتی ہیں. وہ ان پتلی چھڑیری چڑوانوں کو دیکھتے جو صبح کی تازہ ہوا میں ہرنیوں کی طرح مرتوب ڈھلانوں پر بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہیں، جو دن میں کئی بار باجرے کی ٹوٹی پر کرم کا ساگ ڈال کر کھاتی ہیں، اور زرد دھوپ میں پھرنے سے جن کا رنگ کندن کی طرح دہکنے لگتا ہے اور جسم سے کچے دودھ کی مہک اٹھنے لگتی ہے. وہ کارخانوں کے چمنیوں میں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے بجائے پھولوں کے گرد स्याह बनूरों को मंडलाते देखता है और बकरियों में और चिड़ियों की चूं चूं सुनता है, और इन आवाज़ों में कारखानों की चीखों से ज़्यादा खलूस और नगमगी है। इनमें फैज़ की सारी नज़में और अमीरा बाई के सारे गीत हैं और राग के तमाम सुर हैं। ये संपूर्ण राग है, ये बड़े ठाट का राग है, इसे हर कोई सुन सकता है और कोई कोई समझ सकता है। शहरों का सूरज पहाड़ों के सूरज से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अलग थलग है। पहाड़ों पर इसका चेहरा खुशी से मुस्करा रहा होता है और शहर की संगीन इमारतों के अकब में उदास और बुझा बुझा सा होता है। पहाड़ों पर वो एक खूबसूरत सेहतमंद नौजवान है जिसका जिस्म तांबे की तरह दमक रहा है और सुर्ख रुमाल गले में बांधे चश्मे पर बैठा सेब खा रहा है। और शहर में वो एक मरीज़ है जो अपनी चारपाई पर नीम दराज इन नज़रों से वार्ड की मरीजों को तक रहा है जो सूप पी रहे हैं। मैं कब अच्छा जो ये सोच रहे हैं सॉरी मैं कब अच्छा होऊंगा, मैं कब यहाँ से जाऊँगा। शहरों में आकर सूरज भी यही सोचता है, हर चढ़ावा भी यही सोचता है, मैं कब अच्छा होऊंगा, मैं कब यहाँ से जाऊँगा। शहरों में भी फूल खिलते हैं लेकिन इन पर शबनम नहीं गिरती, और जिस फूल पर शबनम ना गिरे वो खजा की मशीन में रखा हुआ बीच है, मीतर पर रखा हुआ रागदान और रागदान में रखा हुआ सिगरेट है, फिर मगर फूल नहीं। नहर में आकर फूल रागदान बन जाते हैं और वादियों में आकर रागदान पर शबनम के मोती गिरे तो वो अपने आप महकने लग जाते हैं, जैसे वो रात की रानी हो, खुशबू हो, गुले सदबर्ग हो, गेंदा हो, गुलाब हो, नरगिस हो। लेकिन चंबा गली में नरगिस बहुत मरोता महकता है। फूलदार फूलों के अलावा यहाँ चंबा गली मोतिया गुलाब और तरनारी के फूल आम पाए जाते हैं, और चंबा गली गांव के लोग इन फूलों की बड़ी हिफाजत करते हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये एक हेम्बा से रहने वाले हैं और तकसीम के बाद कस्बे पंजना के करीब वजार में आकर आबाद हो गए हैं। चंबा गली गांव में गली 7-8 एक मंजिला से स्लेटी छतों वाले मकान हैं जिनके ऊपर तंग अखरोट और बादाम के गंजान दरख्तों की पुरसकून छांव फैली हुई है। इस गांव का नाम इन्होंने खुद रखा है। इस नाम में इन फूलों का भी जिक्र है जिनकी बेलें इनके आबाई घरों की छतों और दीवारों पर चढ़ी हुई हैं। इस सरजमीन का भी जिसकी दीवारों में खेल कूद कर हल चलाकर और जिसके चश्मों का पानी पीकर ये लोग सदियों से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जवान इनसे हज़ारों मील दूर है जो सामने वाली पहाड़ों के जो अब इनसे हज़ारों मील दूर है जो सामने वाली पहाड़ों के अकब में है, लेकिन जवान से लाखों मील दूर है और दीवारें चीन के अकब में है और माउंट एवरेस्ट के इस पार है। चंबा गली के स्पेस पे छोटे छोटे फूलों से इस गांव की सभी औरतें और मर्द मोहब्बत करते हैं। फूल इन्हें अपने वतन और इसकी महक को इसकी हवाओं की याद दिलाते हैं। वो 5 साल के अरसे बज़ाहिर अपने वतन को भूल से गए हैं लेकिन चंबे की याद में एक दाग बनकर इनके दिलों में सुलग रही है। और शादी ब्याह के मौके पर जो कोई सियाह आँखों और शहद भरे होंठों वाली गवालन सर एक तरफ लटका कर ढोलक की थाप पर गाती है, फुल्ला भरी चंगेर इक फुल चंबे दा हो चंबे दा, तो सुनने वालों की आंखें भर आती हैं और इनके दिल चंबे की याद में सलगने लग जाते हैं। वो पलक झपकते अपने वतन पहुंच जाते हैं और इनका वतन इनके पास आ जाता है। रास्ते में कोई माउंट एवरेस्ट नहीं आती और कोई वाइगा हाल नहीं होता, वो कोई परमिट नहीं पूछता, वो आंखें बंद करते हैं और अपने वतन की पथरीली गलियों में घूम रहे होते हैं और चश्मों के पास दरख्तों की छाँव में बैठे हुक्का पी रहे होते हैं। इनकी बच्चियाँ खच्चरों पर दूध डाला दे और लंबूतरी टोकरियों में सब्जियां और फल रखे शहर जाते हुए इनके सामने से गुजरती हैं और एकदम खामोश हो जाती हैं, और थोड़ी दूर जाकर फिर वही आपस में हंसी मजाक शुरू कर देती हैं। आंखें बंद किए वो सब कुछ देखते हैं और आंखें खोलते ही ये सब कुछ गायब हो जाता है, और वो सोचते हैं कि वो अपने वतन को कभी भुला सकेंगे। जब तक वो जिंदा, इनके दिलों का हर जख्म हर दाग जिंदा है। और रचता रहेगा और सलगता रहेगा और कौन जाने अभी वो कब तक जिंदा है। तरनारी का फूल गीली ज़मीन और ज़्यादा पानी मांगता है। ये आम तौर पर चश्मों बावलियों और नदी नालों के किनारे उलझी हुई गुंजान बेलों में उगता है। ये बेलें नस के करीब पानी में डूबी रहती हैं और इनका रंग हल्का नीला होता है और सितारों से मिलता जुलता है। इनकी खुशबू बड़ी गहरी और मीठी होती है और यूं महसूस होता है जैसे रात की रानी में मोती की महक मखलूत हो रही हो। चंबा कली की खुशबू भी शेरी और ठंडी होती है और ये फूल अपनी बेल पर काफ़ी दिनों तक महकता रहता है। तरनारी के फूल पुजियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियाँ भरती हैं और मज़मी किनारे दरख्तों तले बैठकर इनके हार परोती हैं और गजरे बनाती हैं। लेकिन चंबा कली के फूल इन्हें नहीं दिए जाते, इन फूलों के साथ गाँव वाले की खूबसूरती खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं और इन्हें सिर्फ ब्याह शादी के मौके पर दूल्हा दुल्हन को सजाने के लिए तोड़ा जाता है। जब कोई लड़की बेध्यानी में चंबा गली की बेल की तरफ आंख हाथ बढ़ाती है तो दूसरी तरफ फौरन पुकार उठती है, चंबा गली न तोड़ वीर मेरा मारेगा। और वाकई फूल तोड़ने पर इनके वीर भाई इनसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो उदास हो जाती हैं और इनके आगे पीछे इन फिर कर इनकी मिन्नतें करती हैं, नहीं मनाती हैं। और जब वो मान जाते हैं तो खिलखिला कर हंस पड़ती हैं और ये कहकर भाग जाती हैं, हम तो खेल रही थी, नहीं बोलते तो ना बोलो। चंबा गली में सभी घरानों गवालों के हैं और इनके पास अपनी भैंसें हैं जिनका दूध कस्बे में ले जाकर बेचते हैं। कस्बा पंजनाक की बड़ी आबादी है, वो एक साल से पाकिस्तान के पहाड़ी मकामात में तमार होने लगा है। शुरू शुरू में यहाँ कोई पुख्ता सड़क और डाकखाना ना था, लेकिन अब वहाँ डाकखाना, डाकघर भी है और कमेटी का दफ्तर भी है और एक छोटा सा अस्पताल भी है, जेर तामील है। कस्बे के बाजारों में सड़कें पुख्ता कर दी गई हैं और शहरी लोगों ने हुकूमत से ज़मीनें खरीद कर अपना मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। कहीं एक सुर्ख सुर्ख छतियों वाले खूबसूरत मकान बन चुके हैं और कहीं एक बन रहे हैं। गर्मियों में ये मकान आबाद होते हैं, ये मैदानों की गर्मी तपिश और झुलसा देने वाले लू से भागे हुए लोग यहाँ की ठंडी हवाओं में आकर इत्मीनान का सांस लेते हैं। और जब नवंबर में बर्फबारी शुरू होने वाली होती है तो फिर मैदानों में भाग जाते हैं। हुकूमत इस कस्बे को बेहतरीन पहाड़ी मुकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। अगरचे अभी तक लारियों के गुजरने के कोई बाकायदा सड़क नहीं बनी क्योंकि पंजनाक को जाने वाला रास्ता बड़ा पेचीदा और ख़तरनाक है, लेकिन दरियाए झेलम की जानिब से एक काफ़ी बड़ी सड़क की पैमाइश वगैरह का काम शुरू हो गया है। जिस सड़क पर से लोग आजकल पंजनाक जाते हैं वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इस पर छोटे पत्थरों के टुकड़े बिछे हुए हैं और काऊ और चेड़ के दरख्तों की छांव रहती है। ये सड़क दो तीन पहाड़ियों का चक्कर काटती, तारीख घाटियों और भयानक खड्डों के मंजर पेश करती 30 मील तक नीचे चली गई है। पंजनाक आने वाले लोग काजीपुर तक लारियों में आते रहते हैं और इसके बाद खच्चरों पर सवार होकर पहुंचते हैं। रास्ते में हर 10 मील पर डाक बंगला है जहाँ खाने पीने की हर शेय मुनासिब दाम पर मिल जाती है। काजीपुर से पंजनाक 25 मील है, ये रास्ता खच्चर पर 2 दिन में तय हो जाता है। चढ़ाई दुश्वार होने के बावजूद लोग रास्ते का लुत्फ उठाते हैं। जब पंजनाक तीन सवा तीन रह जाता है तो चंबा गली का गांव आता है। ये गांव सड़क से हटकर सेब बटंग और खोबानी के बाग के पुष्ट पर वाकया है और सड़क पर से दिखाई नहीं देता। यहाँ से एक पगंडी बाग के बीचों बीच इस गांव को जाती है। इस मकाम पर सड़क किनारे ऊंचे से तले पर ठंडे पानी की एक बावली है जिसका पानी ऊपर पंजनाक के चश्मों से आता है। मैदानों से आने वाले कभी कभार यहाँ अपने खच्चरों को पानी पिलाने के लिए रुकते हैं और पानी पिलाकर फिर आगे चल देते हैं। सेब के बाग में से गुजरती हुई पगंडी दूध ले जाने वाले ग्वालों की आमदोरफ्त से छोटी सी कच्ची सड़क में तब्दील हो गई है। बावली पर दोपहर को गांव की औरतें मैले कचेले कपड़ों का अंबार लेकर बैठ जाती हैं और शाम तक जी भर के बातें भी करती हैं और कपड़े भी धोती हैं। गांव में तकरीबन हर मकान के साथ एक हाथ खेत भी है जहाँ ये औरतें और इनके मर्द मकई और तरकारियाँ वगैरह बोते हैं। सारा दिन इनकी भैंसें सब्ज ढलवान चरगाहों में इधर उधर फिरती रहती हैं, यानी चराने का काम आमतौर पर नौजवान गवालों के सुपुर्द होता है जो दो तीन टोलियों की शक्ल में बढ़ जाती हैं। भैंस घास पर चल फिर कर जगाली करती रहती है और गवाले खेतों में से चढ़ाए हुए अतपके दुधिया भुट्टे भून भून कर खाती हैं और या कच्चे सेब तोड़कर ले आती हैं और इन्हें कच्चर कच्चर चबाने लगती हैं और एक दूसरे की हाथ थाम कर गर्दने पीछे करके ढलका कर झूमर सा डालने लगती हैं। और जब इस खेल से भी थक जाती हैं तो कोट नट खट ग्वालन अपनी कमर के गिर स्याह रस्सी खोलकर किसी दरख्त से झुकी हुई शाख पर उछाल देती है। इसकी पतंग तैयार हो जाती है। वो हंसी मजाक और हा हू के शोर में इसे जोर जोर से बढ़ाया जाता है। जब दोपहर ढलने लगती है तो वो ढोल डंगरों को हकलाती बावली पर ले जाते हैं, जहाँ इन्हें नहलाते हुए एक दूसरे के मुंह पर पकड़कर दूध की धारें फेंकी जाती हैं और पानी की छींटे मारी जाती हैं। और अगर कोई मुसाफिर अपनी खच्चर को पानी पिलाने वहाँ आ जाए तो इसकी खूब गत बनाई जाती है, तरगत बनाई जाती है। इस दौरान में इनके भाई और खावंद कस्बे में मेहनत मजदूरी करने गए होते हैं और माएँ घर में झाड़ पोंछ करती हैं, डंगर खानों की सफाइयाँ, फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत वगैरह में लगी रहती हैं। इनके बूढ़े बाप रस्सियों की बटाई वगैरह करते हैं, पुरानी चारपाइयों के बांध खोलकर इन्हें बुनते रहते हैं, इन्हें धूप में उल्टा करके गर्म पानी से खटमल मारते हैं, और अगर कोई काम ना हो तो खेत में जाकर हरे से हरे रेशमी भुट्टों और टमाटरों का बड़ा गौर से मुआयना करते रहते हैं। दिन ढलने से कुछ देर पहले जब मवेशी अपने अपने पहाड़ों में टांग दिए जाते हैं तो इनका दूध धोया जाता है, इनमें पानी मिलाया जाता है और ग्वालियाँ इन्हें खच्चरों पर लाद कर कस्बे पंजनाक की तरफ रवाना हो जाती हैं, जहाँ से इनके भाई बंद दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद वापस आ रहे होते हैं। चांदनी रातों में औरतें चरखे लेकर दरख्तों के नीचे आंगन में बैठ जाती हैं। ग्वालन ने नीली चांदनी में मिलजुल कर आँख मशोरी खेलती हैं, झूमर डालती हैं और आग के गिर्द बैठकर इन परदेसियों की बातें करती हैं जो इन्हें कभी नहीं मिले। फिर अमरीका फिर एकाएकी कोई बोल उठती है, अरियो साड़ों को ना छेड़ो नहीं तो फिरोज हमें मारेगा। और फिर सबकी सब हंसकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं और पड़े बैठे हुए इनके बूढ़े माँ बाप छोटी छोटी घंटियाँ ऐसे कवारे कैकों पर इन्हें आहिस्ता से गर्दने घुमाकर देखते हैं और इनकी शादियों की फिक्र में डूबे जाते हैं। गांव की बरादरी का लड़का इनकी आंखों में घूम जाता है, तलिया नहीं, रहमू नहीं, शामी नहीं, फिरोज हाँ। इसके बाद कहीं ना कहीं ढोलक ढमक उठती है और चंबा कली के हार पे परोए जाते हैं और घर की डबियां जमा होनी शुरू हो जाती हैं और दुल्हन बात बात पर शर्माने लगती है। इसकी सहेलियां गाई जाती हैं, जमुए दे लाड़े नी चिट हो किते अड़िए होर किते, और ये गीत रात भर जारी रहते हैं। इन गीतों के सीने में हर ग्वालन के दिल की आवाज़ छुपी होती है, हर लाडली हर दुल्हन की पुकार दफन होती है। चंबा गली के हर ग्वालन जम्मू को की रानी है और चंबे की मलका है, लेकिन अगर इसका दिल कहीं और है और जिस्म कहीं और तो फिर वो आग का पौधा है जिसका दूध देखने में खालिस दूध से ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, यानी लेकिन चखने में नीम से ज़्यादा कड़वा होता है। पहाड़ी रातें खालिस दूध से ज़्यादा महकती और सेहतमंद होती हैं। ये ग्रांड ट्रंक रोड है, यह ज़्यादा लंबी और तवाली सोफे से ज़्यादा आरामदायक होती है। इन्हें बसर करने के लिए सिर्फ एक कंबल चाहिए होते हैं, मोटा खुरदरा कंबल, किसी एस्पिरेंट, किसी ख्वाब अवर, किसी मेट्रो होटल, किसी प्लाजा सिनेमा और किसी विक्टोरियन पलंग की जरूरत नहीं होती। बस आदमी कंबल ओढ़कर बुझी बुझी आग के पास दरख्त तले लेट जाए और सुबह यूं तरोताज़ा उठे गोया दुनिया में इसका पहला दिन शुरू हो रहा हो। गर्मियों में पहाड़ों पर एक रात बसर करना ऐसे ही है जैसे सर्दियों में जमाए जंग के किसी खेत में बैठकर सुनहरी धूप में गन्ने चूसना, लेकिन ये गन्ने देसी होने चाहिए और रातें खुले मैदान में बसर करनी चाहिए। सुबह दम जब तिब्बत की पहाड़ों पर सूरज तुलू होता है, इसका सोना पिघल पिघल कर दोधिया बर्फ पर बहने लगता है, तो बावली के ठंडे ठंडे पानी में आधी डूबी हुई तरनारी की बेल पर शबनमी फूल चमक उठते हैं और चढ़ के जंगलों पे रोशनी आड़े तरछे सतून जगमगाने लगते हैं। लेकिन चंबाई गली में अभी तक सूरज नहीं निकला, अभी सिर्फ पू फटी है और गांव में किसी मुर्ग ने पहली अजान दी है, जिसके जवाब में कस्बा के जानिब से एक और कमज़ोर मुर्ग की आवाज़ सुनाई देती है। कोई भैंस डकराई डकराई और साथ ही कहीं से चकड़ी की घुमड़ घुमड़ सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी बंद कोठरी से आ रही है और पिछले पहरे के सन्नाटे में यूं लग रहा है जैसे कि दूर कहीं सुरंग में से रेल गुजर रही है। आसमानों पर नीले सितारों की रंगत उड़ने लगती है और शहर के बढ़ते हुए फैलते नूरे गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे हैं। एक मकान के पथरीले आंगन में खुबानी के ठगने, लेकिन घने दरख्त तले उधेड़ उम्र का आदमी कदरे झकड़ कर तने के गिर्द लपटा हुआ रस्सा खोल रहा है। रस्सा खोल कर इस कंधे पर रख लिया और जैसे ख्वाब में सहन अबूर करके वो फूस के छेड़ खट तले एक चारपा पास जाकर रुक गया। रेशम रेशमी उठो बेटी, दिन चढ़ाया है। चारपाई पर स्याह रंग के मोटे कंबल में कुछ हरकत हुई, यूं इसकी नींद आवाज ओली और पहली ऐसी खामोशी आ गई। उठो बेटा, मीना भूखी है। इतना कहकर बूढ़ा मकान के अकब में घूम गया, जहां से भैंसों के डकराने और बकरी के सियाने की मुसलसल आवाजें आ रही थी। एक औरत कोठरी का पट खोले कर बाहर निकली। इसका कद छोटा और बदन भारी था, और वो स्याह कमीज और स्याह शलवार में थी, और सर और पांव से नंगी थी। सर कमर के एतबार से वो 35 उम्र के एतबार से वो 35-40 साल के करीब थी। इसने खड़े खड़े पूरा मुंह खोल कर जमाई ली और दूध के खाली बर्तन उठाकर वहीं से बोली, रेशम अरे रेशम, अब उठ भी चुको। कंबल में एक बार फिर खुसर खुसर हुई। चांदनी के कड़े एक दूसरे से बचकर खनखनाए, और रेशमी ने कंबल परे फेंक कर लेटे लेटे एक लंबी अंगड़ाई ली और फिर उठ बैठी। मेज पर दोनों हाथ फेंके, इसने सराहने पड़ा हुआ काला दुपट्टा ओढ़ा, और नींद में डूबे बेरब से कदम उठाती सहन में आ गई। मुर्गियों के डरबे के पास गई, दरवाजा खोलकर इन्हें बाहर निकाला। रात के रखे हुए आटे की गोलियां बनाकर इन्हें डाली। बाड़े में जाकर अपनी बकरियों के आगे मकई के सरसब्ज पत्ते डाले। बकरी रेशम को देखकर और शिद्दत से मैं करने लगी। जब चारा देखा तो अपनी कान झाड़ती खामोश हो गई और थूथनी हिलाकर मकई के लंबे लंबे ताजा पत्ते खाने लगी। इसके पास ही रेशम का बाद दूध दो रहा था। रेशम को बकरी के आगे पोले डालते देखकर बोला, इसे भुट्टे मत देना। रेशम ने जमाई लेते हुए नींद भरी आवाज में कहा, वो खाती ही नहीं है। इसके बाद सहन में आ गई, जहाँ इसकी माँ चूल्हे के पास चौकी के पर बैठी चक्की के पार्ट साफ कर रही थी। पास ही चंगेज में मकई की छोटी सी डेरी थी। आंगन वाले खुबानी के पेड़ में चिड़ियां जाग उठी और ग्रीनी शाखों में उछलती कुत्ती चहचहा रही थी। आसपास मकानों में कहीं कोई बकरी या भेड़ बमिया रही थी, और कहीं भैंस डकरा रही थी। मुर्गे लगातार बोल रहे थे, और कस्बे पंजनाक के मुर्गों से अजानों का तबादला कर रहे थे। रेशम ने एक मिट्टी के कुजे में मटके से ठंडा पानी भरा और इसे बटंग और आलूचे के पौधों पर डालने लगी। आसमान पर सुबह की तरह ताज़ा हल्की नीली रोशनी नमूदार हो रही थी, और तारे एक एक करके जा रहे थे। रेशम आलूचे की जड़ों को पानी दे रही थी, और वो कुछ झुकी हुई इस बालों की एक लट फैल कर नीचे झूलती। और रेशम ने सियाह कमीज और सियाह शलवार पहन रखी थी, और फूटती शहर के नीम अंधेरे नीम जाले में वो ख्वाब की वादियों की कोई शहजादी हो रही थी, जो चश्मे पर झुकी किसी प्यासे शहजादे को पानी पिला रही है। और आलूचे और बटंग शहजादों को पानी पिलाकर रेशम ने वहीं पत्थर की सिल पर बैठकर मुंह धोया, और खुबानी के तले बिछी हुई सफ़ पर नमाज पढ़ी, और बाड़े में आ गई। इसकी माँ ने आंगन में चक्की घुमड़ घुमड़ शुरू कर दिया। इसका बाप मकड़ी के बाड़ के पास बैठ दूध छोटे छोटे वल्टूहों में डाल रहा था। रेशम ने खच्चर पर कंबल डालकर इन्हें अच्छी तरह से कसते हुए कहा, बापू तुम रोज ऐसा करते हो, क्या हमें गुनाह नहीं होता? इसका बाप बूढ़ों ऐसे लहजे में खी खी करता हंस पड़ा। अरे पगली, किसी को पानी पिलाना कैसा है? हमें तो दूध को पानी पिलाते हैं, देखती नहीं हो इसे कितनी प्यास लगी होती है? होंटो हु, पानी पी। हाँ पानी पिलाता हूँ, रेशम बड़बड़ाने लगी। बूढ़े ने दोनों बलहूटों में 6 शेर के करीब बाउली का नीम गर्म पानी मिलाकर इनके मुंह घर के डालों से बंद किया और इन्हें खच्चर पर लाद दिया। अब ले ले अब फुर्ती से जा और इस तरह वापिस आ, और वहनों से कहना शबे रात को वो जो दूध दिया था इसके पैसे भी दे दे। ले जा। जल्दी चल, भोर होने को है। रेशम ने पतली सी लंबी चमक हाथ में ली और बड़ी फुर्ती से खच्चर पर बैठ गई, और खच्चर ने जगाई। कदम कदम छोटे छोटे पत्थरों पर से गुजरती पगडंडी पर होली, जो सेब के बाग में से पंजनाग जाने वाली सड़क से जा मिलती है, सूरज निकलने से पहले की सहर गदास नेल को चमक में सेब का बाग, रात के पुरअसरार सालों सायों बिछड़ रहा था। दरख्तों पर तोते चले आ रहे थे और कच्चे सेबों को कतर कतर कर खराब कर रहे थे। सभी मामूल ठंडी और खास पत्तों और किस्म किस्म के फूलों की महक से लदी हुई थी। चश्मे से छोटी सी नदी की शक्ल में दरख्तों के दरमियान से बल खाता गुजर रहा था और गल की गर गर की सांस धीमी ले में बावली में गिर रहा था, जहाँ से एक पतला दुबला नीचे वादियों और चरागों की तरफ निकल गया। बावली में पानी की सियाह चादर में सुबह की शाम रोशनी झलक रही थी और इसके स्लें खुश्क थीं। रेशम ने वहाँ रुककर खच्चर को पानी पिलाया और इसकी सड़क पर आ गई, जो इसके दो दरवैया दरख्तों के दरम्यान से गुजरती। बड़े नाले के पुल और वहाँ से कस्बे ना को चली गई। सड़क किनारे घास में आज छुपे दर्द फूल शहर की रोश को जुगवार में होले होले डोल रहे थे और दरख्तों पर चिड़ियों तोतों ने सुबह के राग अपना रखे थे। चेशम जिस वक्त सड़क का आखिरी मोड़ घूमकर कस्बे के बड़े बाजार में दाखिल हुई तो जम्मू की बर्फ पोश चोटियों पर सूरज का गरम गरम गहराम सहाल था नमूदार, वर्ष की शहरी सुनहरी रोशनी कस्बे के बाजार वादियों और ओढ़े बड़े मैदानों में सोने का गुबार सा उड़ने लगा। ऊपर चढ़कर जंगलों में पिघले हुए जर्द सोने की आबशारें सी बह निकली और छोटे छोटे टेलों पर तैरते हुए बादलों के टुकड़े जर्द सुनहरी और नगलजी रंगत अख्तियार करके कस्बे के बाजारों में दुकानें खुल चुकी थी और कारोबार शुरू थे। रेशम को बाजार में से गुजरते हुए देखकर रेशम को बाजार में से पुरअसरार गुजरते हुए देखकर रोज की तरह झाकू पंसारी ने आवाज देकर रेशम के बाप की खैर खैरियत पूछी। झंडू मोची ने इसे ललचाई हुई नजरों से देखा और वीनू हलवाई ने शबे बारात किसे चुकाने पर टाल मटोल दिया। दीनू बाबा आज पैसे जरूर दो, आज मेरे बापू को बड़ी जरूरत है, दे दूंगा। दे दोगे ना? दीनू बाबा ने होंठ सुलगा कर गर्दन खुजलाई। अरे बेटी, काले तो मंदे में जा रहा है, काम तो मंदे में जा रहा है। कल सारा दूध फट गया, रात जाग देर से लगाई और सुबह दही अलग था और पानी अलग था। ऊपर से तुम्हारी मासी बीमार होगी, मेरी तो जान में है। बापू से कहना अगली शब रात तक सब्र करे, अल्लाह ने चाहा तो पानी अदकार में है, पाई पाई अदा कर दूंगा। बापू से कहना कस्बे की दो तीन दुकानों पर दूध बेचकर रेशम वापस हुई। अब दिन पूरी तरह निकल रहा आया था और सफेद फूल धूप बदन को चुभने लगे थे। आबादी से रेशम ने खच्चर की पीठ पर दो तीन चप्पे आहिस्ता से लगाई तो दूर दराज कदम उठाने लगी। फिर गैर हमवार सड़क पर सफेदे के फूलों के लंबे लंबे साए फैले हुए थे और फिजा में कहीं शोर मक्खियों की भनभनाहट थी और कहीं तोते शोर मचा रहे थे। रास्ते में शहर से आने वाले कुछ लोग खच्चरों पर सवार रेशम के पास से गुजर गए। इनका सामान और बच्चे टुओं पर लदे पीछे पीछे चल रहे थे। एक खच्चर पर बैठी हुई दुबली पतली सी जर्द चेहरे वाली गरारा पोश ने बड़े गौर से रेशम को देखा और अगले खच्चर पर बैठते हुए लंबी गर्दन वाले नौजवान से कहने लगी, यहाँ औरतें क्या खाती हैं? दरख्तों के पत्ते? ओ गुड, मैं भी यही खाऊंगी, फिर मेरी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी, मगर इस खच्चर से तो मेरे कूले तोड़ दिए हैं, साला चलता ही नहीं। खच्चर ने गर्दन घुमाकर अपने सवार के मरियल चेहरे को देखा और थूथी झाड़कर फिर से चलने लगा। आध पौन घंटे में रेशम चंबा गली और अपने गांव के मोड़ पर पहुंच गई। सेब के हुए खच्चर पर से उतर पड़ी और इसे पानी पिलाने के लिए बावली पर आ गई। बादाम के बड़े बड़े की छांव में पहुंचकर वह ठटक सी गई। बाजली पर एक और खच्चर गर्दन झुकाए पानी पी रहा था। सिर्फ एक बिस्तर लदा था, वहां कोई आदमी न था। रेशम कदम चलती चलती अपने खच्चर को लेकर बावली तक आई और मतलाशी निगाहों से चारों तरफ देखने लगी। इसे यकीन था खच्चर का मालिक कहीं करीब होगा, मगर वो बिस्तर समेत खच्चर अकेला छोड़कर कहीं चला गया। इसने अपने खच्चर की बाग ढीली करके इसे पानी पिलाया और दमड़े दूसरे खच्चर के पास जाकर इसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। मान कोई पीछे से बोला, ये खच्चर चोरी का नहीं ग्वालन। रेशम ने चौंक कर पहले खच्चर को फिर अकबर में देखा। जुमला खच्चर की गर्दन पर हाथ लगा रखते ही बुलंद हुआ था। उसे यूं लगा जैसे खच्चर बोला हो, लेकिन अपने पीछे एक नौजवान को देखकर जल्दी से परे हट गई और अपनी खच्चर की गर्दन पर हाथ फेरने लगी। तो वो पानी पी रही थी। अजनबी नौजवान का कद सफेद का छोटा जिस्म चौड़ा था और वह आंखों पर स्याह ऐनक चढ़ाए एक टांग बड़े से पत्थर पर रखे सिगरेट पी रहा था और ऐनक में से रेशम को घूर रहा था। तुमने समझा होगा, चलो सुबह सुबह खच्चर हाथ लगा। यहाँ के लोगों में चोरी का मर्ज आम है। रेशम के गाल शर्म से और गुस्से में लाल हो गए। इसे अपनी बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। इसने तेजी से कहा, शहरी बाबू आदमी देखकर बात किया करो, चोरों के चोर होंगे तुम्हारे कोई और, हम मेहनत करते हैं और खाते हैं। शहरी बाबू सिगरेट एक तरफ फेंक कर बावली की सिल पर आकर बैठ गया और मुंह हाथ धोने लगा। मैंने कब कहा कि तुम चोर हो, मैंने तो कहा यहाँ चोरी का मर्ज आम है। रेशम कुछ न बोली, वो अपनी खच्चर को पानी पिलाकर हाथ मुंह धोने लगी। नौजवान बावली से हाथ बाहर निकालते हुए बोला, पानी गंदा ना करो लड़की, पहले मुझे पी लेने दो। रेशम सोचने लगी, ये कैसा आदमी है जो हर बात में लड़ाई झगड़ा ढूंढ रहा है, मगर पानी तो तुम्हारी तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है या खुदा की तरफ से आ रहा है, तुम हाथ बाहर निकालो। नहीं निकालती, रेशम को भी गुस्सा आ गया। नहीं निकालती, नौजवान ने गरज कर पूछा। रेशम का खून गर्म हो गया, इसने दांत पीस कर कहा, नहीं। नौजवान ने बड़े ठंडे और धीमे लहजे में कहा, ना तो ना निकालो, हम निकाल लेते हैं। इसने हाथ बाउली के पानी से निकालकर पतलून से पूछते हुए उठ खड़ा हुआ और खच्चर पर पड़ा हुआ बिस्तर दुरुस्त करने लगा। रेशम को अपने जी में बड़ी नदामत महसूस हुई, पर जैसे किसी ने अचानक ठंडा पानी डाल दिया हो। ये कैसा आदमी, अभी लड़ने पर तैयार, अभी यूं खामोश हो गया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रेशम को यूं लगा जैसे वो नौजवान हमेशा प्यासा रहेगा और अब कभी पानी नहीं पिएगा। ना जाने वो बेचारा कहाँ से चल कर आ रहा है, इसे कहाँ जाना है, क्या खबर रात भर प्यासा हो। रेशम को इसकी एकदम हमदर्दी होने लगी, लेकिन इसने मिन्नत समाजत ना करना चाहती थी। इसने अपने हाथ खींचकर सिर्फ इतना कहा कि मैं नहीं पीती, पहले तुम ही पी लो। नौजवान कुछ ना बोला और खच्चर पर बिस्तर कता रहा। रेशम ने फिर कहा, आप पानी क्यों नहीं पीते। नौजवान बस्तूर खामोश रहा। रेशम को उलझन सी होने लगी, अब पी लो ना। नहीं पीता, नौजवान ने गरज कर कहा। रेशम काम गई और खच्चर के साथ लग गई। नौजवान गुस्से में रेशम को देखा और अपनी खच्चर की बाग थाम कर सेब के बाग में से निकलकर पंजनाक जाने वाली सड़क पर चलने लगा। रेशम एक लम्हा के लिए मबहूत होकर रह गई, फिर वो इस आदमी की अकल पर हंस पड़ी। अजीब आदमी, बावली पर पानी पीकर इसने खच्चर साथ लिया और घर की जानिब चल दी। रेशम की माँ आंगन में बैठी दूध धो रही दूध बुलो रही थी। इसके पास ही मुर्गियां दाना दंका चुन रही थी। इनके दरमियान लाल कुल्फी वाला मुर्ग गर्दन ठाटे खड़ा था। लाल कल्फी वाला बकरी खुबानी के दरख्त तले गीली जमीन पर बैठी जगाली करते हुए ओंग रही थी। बटंग के नाजुक शगुफों के से गिर्द स्याह रंग का भनूरा चक्कर लगा रहा था। रेशम को आता देख के मुर्गियां इधर उधर हट गईं और खच्चर के खड़ों की आवाज पर बकरी ने आंख खोलकर रेशम को देखा और फिर आहिस्ता से ममिया कर फिर आंखें बंद कर दी। रेशम ने बाड़े में जाकर खच्चर को बांधा और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। माँ ने कहा, रोटी तंदूर में ही रखी है, निकाल कर खा ले, साग तो तेरी बकरी खा गई है, संदूक में से गिर कर गुड़ ले लेना। रेशम ने गुस्से से बकरी की तरफ देखा, साग के बगैर इसी रोटी हजम नहीं होती, इस ईद पर इसे जबह ही कर लूंगी। बकरी ने रेशम की बात सुन ली थी, इसने आंखें खोलकर अजीब अजीब नजरों से रेशम को देखा। इनमें मोहब्बत और रहम की इल्तिजा थी और फिर आंखें बंद कर ली। रेशम ने मकई की रोटी पर गुड़ और थोड़ा सा मक्खन लगा कर वहीं खाना शुरू कर दिया। वो एक लकमा खुद खाती और दूसरा मुर्गियों के आगे डाल देती और दूसरी तरफ से इसका बाप आंगन में दाखिल हुआ और रेशम को बैठे देखकर बोला, दीनू ने पैसे दिए। इसी के साथ ही किताब का ये पाठ खत्म होता है। अगला पाठ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।